दिन भर 20 फरवरी दिन बुधवार, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। भारत दौरे पर आए सऊदी अरब के शहजादे के साथ हुई चरम पंथ को रोकने के लिए सहयोग पर सहमति।
आतंकवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन दे रहे देशों पर सभी संभव दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को ठहराया अवमानना का दोषी, 4 हफ्ते में पैसा ना चुकाया तो हो सकती है जेल। मसूद अजहर के मामले में भारत के सामने क्यों रोड़े अटकाता है चीन, होगा दुनिया जहान। और प्रख्यात आलोचक नामवर सिंह का निधन, सुनिएगा उनका पुराना इंटरव्यू।
दोनों में मुझे यहाँ के युवा में और अपने देश के युवा में मुझे बहुत फर्क मालूम होता है। एक तो ये कि ये बहुत समृद्ध देश का युवा है।
पर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि चरमपंथ से निपटने के लिए उनका देश भारत के साथ खुफिया सूचनाएं साझा करने को तैयार है। प्रिंस सलमान और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्राउन प्रिंस के भारत के इस पहले राजकीय दौरे में कई अहम समझौते हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी को अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल अंबानी ने जानबूझकर कोर्ट के उस आदेश का अवमानना की जिसमें स्वीडन की टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन को 5.5 अरब रुपए देने थे। कोर्ट ने अंबानी और आरकॉम के दो निवेशकों को 4 हफ्ते के अंदर एरिक्सन को 4.5 अरब रुपये देने का निर्देश दिया है। ब्रिटेन में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के 3 सांसदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका आरोप है कि सरकार ब्रेग्जिट मुद्दे को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही। तीनों सांसदों ने कहा कि वो निर्दलीय समूह में शामिल हो जाएंगे। विपक्ष के कई सांसदों ने मिलकर सोमवार को ये समूह बनाया था। उन्होंने भी ब्रेग्जिट और यहूदी विरोधी घटनाओं को लेकर लेबर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। कंजर्वेटिव पार्टी के डिप्यूटी चेयरमैन जेम्स क्लेवेरी ने सांसदों के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,
It's very sad and disappointing. They are passionate and effective.
ये बहुत ही दुखद और निराशाजनक है। वो बहुत ही जोशीले और प्रभावी सांसद थे और आप लोगों को खोना नहीं चाहते। वो ब्रेग्जिट को लेकर असहमत हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वही कर रही हैं जो उन्होंने 2017 में आम चुनाव में अपने घोषणा पत्र में कहा था। ये थे ब्रिटेन की सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के डिप्यूटी चेयरमैन के शब्द। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर यूरोप में इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की गई तो रूस जवाब देगा। पुतिन ने कहा कि जिन देशों में मिसाइलें तैनात की जाएंगी उन देशों पर तो जवाबी कार्रवाई होगी ही, साथ ही साथ अमरीका को भी जवाब दिया जाएगा। संसद के अपने वार्षिक संबोधन में पुतिन ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस बात पर भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी से बाहर हो सकता है। पुतिन ने कहा कि किसी भी नई मिसाइल तैनाती पर रूस कड़ी प्रतिक्रिया देगा और कोई भी कदम उठाने से पहले अमेरिका के नीति निर्माताओं को इसके जोखिम का हिसाब लगा लेना चाहिए।
Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить.
अगर कोई देश हमारे लिए खतरा बनेगा तो उसे जवाब देने के लिए रूस को भी हथियार बनाने होंगे। ऐसी स्थिति में हम उन देशों को तो जवाब देंगे ही, साथ ही उन देशों को भी जवाब देंगे जहां से इस तरह की मिसाइल तैनातियों के फैसले लिए जाएंगे। ये थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। 30 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रही चिली मूल की एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस महिला पर चिली के तानाशाह कहे जाने वाले जनरल पिनोशे के शासन में अपहरण और उत्पीड़न करने के आरोप हैं। ऑस्ट्रेलिया में आया के तौर पर काम करने वाली एंड्रियाना रिवास पर 1970 के दशक में चिली की खुफिया विभाग के लिए काम करने का भी आरोप है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अगले हफ्ते वियतनाम में मुलाकात होनी है, जिसके लिए किम ट्रेन से वियतनाम जाने की योजना बना रही हैं। प्योंगयांग से वियतनाम की दूरी 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और वहां ट्रेन से जाने में उन्हें 3 दिन का वक्त लगेगा। बीबीसी समाचार।
बीस फरवरी बुधवार दिन भर के श्रोताओं को अपूर्व कृष्ण का नमस्कार। भारत के दौरे पर आए सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में 5 समझौते किए, मगर सबसे ज्यादा कौतूहल इस बात को लेकर था कि दोनों देशों के बीच पुलवामा, पाकिस्तान और चरमपंथ को लेकर बात होती है कि नहीं। और चरमपंथ पर चर्चा हुई और दोनों देशों के बीच चरमपंथ को किसी भी तरह का समर्थन दे रहे देशों पर दबाव बनाने और गोपनीय सूचनाएं साझा करने पर सहमति बनी है। पूरे ब्यौरे के साथ बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली।
हालांकि दोनों मुल्कों के बीच हुए समझौतों में पर्यटन से लेकर पूंजी निवेश तक के क्षेत्र शामिल थे, लेकिन सबका ध्यान इस ओर था कि क्या चरमपंथ का मुद्दा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान की बातचीत में उठा या नहीं। उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा,
इस खतरे से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए हम इस बात पर सहमत है कि आतंकवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन दे रहे देशों पर सभी संभव दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है।
नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के ढांचे को नष्ट करना और आतंकवादियों और उनके समर्थकों को सजा दिलवाने की बात भी कही और बोले कि खाड़ी और पश्चिम एशिया के देशों में शांति स्थापित करना भारत और सऊदी अरब दोनों के हित में है। पुलवामा आत्मघाती हमले के मद्देनजर चरमपंथ का मुद्दा भारत में चर्चा में है और भारतीय कश्मीर में हुए इस हमले के चंद दिनों बाद ही सऊदी युवराज पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे थे। भारत ने इस हमले में पाकिस्तानी फौज का हाथ बताया है, जिससे पड़ोसी देश ने इनकार किया है। भारतीय प्रधानमंत्री के बाद बारी थी बोलने की मोहम्मद बिन सलमान की, जिन्होंने अपने संक्षिप्त भाषण में हालांकि आतंकवाद और उग्रवाद जैसे लफ्जों का इस्तेमाल किया, मगर बात बहुत आगे तक नहीं गई।
जहाँ तक एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की बात है, जो हमारे कॉमन कंसर्न है, हम ये बात बताना चाहते हैं भारत को बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हर तरह का कोऑपरेशन करेंगे, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयर हो और न सिर्फ भारत बल्कि सारे जो हमारे आसपास हैं, सबके साथ मिलकर काम करेंगे, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य, रोशन भविष्य को सिक्योर करेंगे। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
दो दिनों पहले बोलते हुए सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर ने कहा था कि उनका उद्देश्य दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव को कम करना है और ये देखना है कि उनके बीच जो मतभेद हैं उसे किस तरह से शांति से हल किया जा सकता है। लेकिन जब भारतीय विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि क्या सऊदी अरब ने दोनों मुल्कों के बीच किसी तरह की मध्यस्थता की पेशकश की है, तो इसका जवाब नहीं में मिला। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
सऊदी युवराज सलमान भारत आने से पहले पाकिस्तान गए थे, जहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी उसी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और सत्कार किया जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने किया। यानी भारत और पाकिस्तान दोनों सऊदी अरब को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं और ऐसे में सऊदी अरब के लिए भारत पाकिस्तान दोनों देशों के साथ अपने व्यवहार को संतुलित रखना कितनी बड़ी चुनौती थी, ये सवाल पूछा मैंने मध्य एशिया मामलों के जानकार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर A.K. पाशा से।
बहुत ही कठिन पोजीशन है बैलेंसिंग करना, लेकिन मेरे ख्याल से जो भी मुहावदे किए गए, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा गया, उससे दो बातें जाहिर होते हैं। एक तो सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान की अहमियत, जो इम्पोर्टेंस कहते हैं, उससे जाहिर हो गया है कि वो कुछ भी नाराज करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो भारत हो या अफगानिस्तान हो या रशिया हो, चीन हो, ईरान हो। तो वो फंडामेंटल है प्रिंसिपल, किसी भी हालत में कोई भी,
मतलब पाकिस्तान जो है उसको एक रत्ती कोई असर नहीं पड़ा है सऊदी अरब के इस दौरे से, थोड़ा सा भी कोई एतराज या कोई आपत्ति जताने वाली बात सऊदी अरब ने कुछ नहीं की है, बल्कि और ज्यादा जो पैसा है $20 अरब का वो उनको दिया भी है।
जी, मेरे ख्याल से जो एक बड़ा भाई या छोटे भाई को जो डांटता है, उस तरह से माइल्ड डांट पड़ी है कि आप सोच समझ के कदम उठाइए। लेकिन जो हम चाहते थे सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान पे असर करके टेररिज्म और आतंकवाद को कंटेन करने के लिए, मेरे ख्याल से वो अभी दूर की बात है।
ऐसा ये अंतर क्यों भारत को लेकर और पाकिस्तान को लेकर?
देखिए, सऊदी अरेबिया जो है पाकिस्तान को अपना भाई मानता है, इस्लामिक भाई, और हम रहे उनके दोस्त
जी।
तो ये दोस्त और भाई में काफी अंतर होता है
जी, जी।
तो इस लिहाज से हालांकि इंडिया में भी डोमेस्टिक इमेज के लिए वो कस्टोडियन ऑफ द होली प्लेसेस मक्का मदीना बोल के वो भी एक डोमेस्टिक एंगल है। हमारे भी लीडर्स जब इंटरेक्ट करते हैं और प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि सऊदी अरेबिया कोटा हमारे हाजियों के लिए बढ़ाया है, तो एक मैसेज होता है इंडियन डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी। लेकिन जो असल बात है स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की, जो बात हो रही है स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, हम सऊदी अरेबिया से किसके खिलाफ चाहते हैं? आतंकवाद के लिए। लेकिन वो उभर के नहीं आया वो मामला जो हम चाहते थे। यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस ने पुलवामा का जिक्र भी नहीं किया, आतंकवाद का जिक्र भी नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि हम इंटेलिजेंस कोऑपरेशन करेंगे और काउंटर टेररिज्म में भारत का साथ देंगे। ये तो पहले से 20 साल से कहते आ रहे हैं और थोड़े बहुत टेरर रिलेटेड केसेस डिपोर्टेशंस हुए हैं, लेकिन जो गहराई हम जैसे इसराइल से करते हैं या अमेरिका से करते हैं, उस तरह की कोऑपरेशन हमें सऊदी अरेबिया से अभी देखने को उभर के नहीं आया है।
ये थे मध्य एशिया मामलों के जानकार प्रोफेसर ए.के. पाशा।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
एक वक्त में भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रही रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। पिछले कई सालों से लगातार घाटे ने कंपनी की कमर तोड़ दी और अंबानी ने कुछ समय पहले खुद कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया था। और अब आज सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी और उनके दो सहायकों को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए रिलायंस की साझेदार रही स्वीडन की कंपनी एरिक्सन को 4.5 अरब रुपए देने का हुक्म दिया है। 4 हफ्ते में पैसा अदा नहीं हुआ तो अनिल अंबानी जेल जा सकते हैं। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, ये जानने के लिए मैंने सुनवाई के दौरान मौजूद पत्रकार सुचित्र मोहंती से संपर्क किया।
सुप्रीम कोर्ट में आज काफी गहमागहमी रही, 10:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और अनिल अंबानी भी खुद लगभग 10:05 सुप्रीम कोर्ट में आए। कोर्ट के अंदर सारे लोग मौजूद थे और जैसे ही सुनवाई शुरू हुई 10:30 पर कोर्ट में 2 जज की बेंच की सुनवाई हो रही थी। रोहिंतन फली नरीमन हेड कर रहे थे इस बेंच को, रोहिंतन फली नरीमन के साथ और विनीत सरन जी भी कोर्ट में मौजूद थे। 10:30 पे तुरंत सुनवाई शुरू हुई, जजमेंट प्रोनाउंस होना शुरू हुआ, कोर्ट ने उनको तुरंत होल्ड गिल्टी कर दिया यानी कि दोषी करार दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चार्जेस में, यानी कि जो आपने कोर्ट का ऑर्डर था कोर्ट के ऑर्डर को आपने पूरी तरह से पालन नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने बोला कि आपको तुरंत होल्ड गिल्टी हम करते हैं। हालांकि थोड़ी बहुत राहत रही अनिल अंबानी को कि उन्होंने सजा नहीं दिया
जी। और ये आदेश जो था वो क्या था सुप्रीम कोर्ट का जिसके लिए अदालत ने उनको कंटेंट ऑफ कोर्ट का दोषी ठहराया है?
देखिए जो करार हुआ था अनिल अंबानी के बीच रिलायंस कम्युनिकेशन और जो एरिक्सन कंपनी है स्वदेश जॉइंट मेकर के बीच जो करार हुई थी, उसको करार के हिसाब से कुल मिलाकर 550 करोड़ देना था, लेकिन इन्होंने लगभग 110-115 करोड़ रुपए देने के बाद इंटरेस्ट मिला के दिया था और बाकी जो बच गया था वो नहीं दे पा रहे थे। और कोर्ट का आदेश साफ तौर पर ये कह रहा था कि आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये उल्लंघन किया था कोर्ट के जो अपेक्स कोर्ट का ऑर्डर है उन्होंने सब पूरी तरह से उल्लंघन किया था। तो कोर्ट ने इसी बहस भी हुआ, लगभग 2 दिन बहस हुआ और अनिल अंबानी की तरफ से मुकुल रोहतगी साहब जो कि फॉर्मर एजी थे वो भी बहस कर रहे थे और ये बहस के दौरान इन्होंने मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि इन्होंने कोई कंटेम्प्ट नहीं किया। हालांकि सिरे से ही सुप्रीम कोर्ट की 2 जज के द्वारा सिरे से नकार कर दिया और आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में होल्ड गिल्टी किया अनिल अंबानी को। जैसे ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनको चार्जेस पे होल्ड गिल्टी किया तो अनिल अंबानी तुरंत खड़े हो गए, उनके चेहरे से साफ दिख रहा था परेशानियां दिख रही थी।
और अभी उनके सामने फिर रास्ता और क्या क्या हो सकता है अनिल अंबानी के सामने कानूनी रूप से?
देखिए कानूनी रूप से हम कह सकते हैं कि अनिल अंबानी अभी रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं, यानी कि रिव्यू पिटीशन वही होता है जो दोबारा रिव्यू करने के लिए मांग कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और मैं ये साफ तौर पर ये कहना चाहूंगा कि रिव्यू पिटीशन वही होता है जो रिव्यू की मांग करते हैं, यानी कि कुल मिला के वही जज के पास जाएगा, 2 जज जो सुनवाई किए हैं जो फैसला दिए हैं उन्हीं के पास जाएगी, यानी कि वही जज सुनवाई करेंगे और कुल मिलाकर 99% चांसेस ये है कि उनकी जो रिव्यू पिटीशन है वो भी डिसमिस होने की चांसेस ज्यादा है क्योंकि सुनवाई उन्हीं के सामने समक्ष होने वाली है।
इसका मतलब ये खतरा पूरा बरकरार है कि पैसा अगर नहीं दिया ये जो 453 करोड़ का है तो अनिल अंबानी को 4 महीने जेल में बिताने पड़ सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल खतरा अभी भी है और खतरा बिल्कुल रहेगी क्योंकि अभी भी जो आदेश किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसका पालन करना होगा और रिव्यू पिटीशन जब भी होगी तभी भी खतरा बरकरार रहने की उम्मीद है।
सुप्रीम कोर्ट से पत्रकार सुचित्र मोहंती। हिंदी के प्रख्यात आलोचक और साहित्यकार नामवर सिंह का निधन हो गया है। वे पिछले कुछ समय से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे, जहां कल रात उन्होंने 93 वर्ष की आयु में आखिरी सांस ली। 28 जुलाई 1927 को बनारस के गांव जियनपुर में जन्मे नामवर सिंह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े और कई वर्षों तक वहीं पढ़ाया। बाद में वो सागर यूनिवर्सिटी और जोधपुर यूनिवर्सिटी में भी शिक्षक रहे और फिर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना की और वहीं से रिटायर हुए। 1971 में जब नामवर सिंह जोधपुर यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, तब वो बीबीसी के लंदन मुख्यालय बुश हाउस गए, जहां उनसे बीबीसी के प्रसारक ओंकार नाथ श्रीवास्तव ने बातचीत की। पेश है उस बातचीत का वो अंश जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या वो पश्चिम और भारत के युवाओं में कुछ अंतर देखते हैं।
दोनों में मुझे यहाँ के युवा में और अपने देश के युवा में मुझे बहुत फर्क मालूम होता है। एक तो ये कि ये बहुत समृद्ध देश का युवा है और हमारे यहाँ उस हद की तक की समृद्धि नहीं है, बल्कि विकासशील देश है
जी।
हम लोगों की ऐसी भौतिक ज़रूरतें हैं जो छिपी हुई चीज़ नहीं है, हम आप सभी जानते हैं, सारी दुनिया के लोग जानते हैं। अलावा इसके, इन आर्थिक मतभेद के बावजूद दोनों की संस्कृतियों का अंतर है, इसलिए दोनों में की मानसिकता में अंतर दिखाई पड़ेगा। मैं ये कहूँगा कि राजनीतिक रूप से आप देखें तो हमारे यहाँ के युवा लेखन में जितना गुस्सा है और जिस हद की राजनीतिक चेतना है, यहाँ के युवा लेखन में मुझे नहीं दिखाई पड़ा। कभी कभी नकल के कारण, उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि कुछ सेक्स संबंधी क्रांति करने की बात हमारे यहाँ के साहित्य में भी युवा लेखन में है, कविता वालों ने खास तौर से यही किया। तो सेक्स और राजनीति, कभी कभी देह की राजनीति से कहते हैं। आपको याद होगा कि भारती ने पूर्व एक लेखमाला लिखी थी और सारिका में छपी थी कमलेश्वर की
जी।
उस पर चर्चा भी हुई थी। तो देह की राजनीति जैसी चीज पश्चिमी युवा लेखन से हमारे युवा लेखन को जोड़ती तो है, लेकिन 2-4 साल के बाद हमारे यहाँ का युवा लेखन अलग हो गया और उसने देखा कि देह की राजनीति जो है बड़ी नकली चीज़ है, आयात की हुई है, और उससे अलग हट के अपनी जो वास्तविक स्थिति है और मनुष्य की स्थिति है, उसकी ओर दिन पर दिन ये बढ़ती चली गई।
शायद आप ये कहना चाहते हैं कि सीधे तौर पर नहीं तो एक परोक्ष रूप से ही सही, जिम्मेदारी की डोरी से अलग नहीं हुआ है हमारा युवा वर्ग।
हाँ, निश्चय ही, और हो भी नहीं सकता है। उसमें जिम्मेदारी का बल्कि अतिरिक्त बोध है, क्योंकि उसका यह ख्याल है कि पुरानी पीढ़ी के लोगों ने जैसे हमें धोखा दिया है और उसको जितनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए थी नहीं निभा रहा है, इसलिए उसकी गलतियों का खमियाजा भी इसको भुगतना पड़ रहा है। अपनी ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसका ख्याल है कि वो अपने पुरखों की जिम्मेदारी भी उसी को ढोनी पड़ रही है, पड़ेगी। इसलिए मैं कहूँगा कि एक अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोध है
जी,
और वो बोध नहीं बल्कि बोझ है।
आलोचक नामवर सिंह का 1971 में लिया गया इंटरव्यू। और अब दुनिया जहान, ऐसे कई मौके आए जब भारत ने जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दरवाजा खटखटाया। भारत की शिकायत है कि हर बार चीन ने उसके प्रस्ताव पर वीटो कर दिया, जिसकी वजह से मसूद अजहर का नाम ग्लोबल टेररिस्ट की सूची में कभी नहीं जुड़ पाया। चीन मसूद अजहर के मामले में पाकिस्तान का समर्थन क्यों करता है? क्यों मसूद अजहर पर भारत की मांग का समर्थन नहीं करता? इन सवालों की पड़ताल करती है बीबीसी संवाददाता संदीप सोनी की प्रिय प्रस्तुति दुनिया जहान।
दुनिया जहान।
चौदह फरवरी को पुलवामा में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के काफिले पर जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती हमले के बाद मसूद अजहर का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया है।
अल्लाह के नबी ने हमसे हिंदुस्तान के जिहाद का वादा फरमाया, अल्लाहु अकबर, मेरे आका मदनी को इन गरीब मुजाहिदों की याद उस वक्त भी रही थी जो आज हिंदुस्तान में जाके अपनी कब्रें बनवा रहे हैं, जिन्हें जनाजे नसीब नहीं हो रहे।
जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान का एक चरमपंथी समूह है और मसूद अजहर इसके मुखिया। भारत चाहता है कि मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथी घोषित किया जाए। इसके लिए भारत सुरक्षा परिषद में गुहार लगाता रहा है, लेकिन हर बार चीन ने भारत के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। भारत के पूर्व राजनयिक विवेक काटजू बताते हैं,
चीन पाकिस्तानी फौज को मसूद अजहर के मामले में शह देता है। मसूद अजहर पाकिस्तानी फौज का एक वर्चुअल हिस्सा है। मसूद अजहर और जैश मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा, ये गुट जो हैं और ये शख्स जो हैं हाफिज सईद, ये पाकिस्तान विदेश नीति और उनकी सामरिक नीति को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। चीनी सेना और पाकिस्तानी सेना के घनिष्ठ संबंध हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सेना ने उनसे विनती की हुई है कि आप मसूद अजहर को यूएन के तहत टेररिस्ट ना घोषित होने दें।
चीन और पाकिस्तान का याराना बहुत पुराना है। इस्लामाबाद में बीबीसी संवाददाता आसिफ फारूकी बताते हैं।
चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो हिमालया से ऊंची है, समुन्दर से गहरी है और शहद से मीठी है। और ये एक कांस्टेंट पॉलिसी है। पाकिस्तान में बहुत अनसर्टेनिटी है, कुछ पता नहीं लगता आज जो बात कर रहे हैं कल वो होगी या नहीं होगी। लेकिन ये वो चीज है जो पिछले 40-50 साल से ऐसे ही चल रही है और अभी 2-3 साल में तो इसमें नई एक जान पड़ी है। इन्वेस्टमेंट जो चाइनीज आई है पाकिस्तान में कुछ $60 बिलियन के बाद तक पहुंच गई है वो सीपैक के नाम से। हार्डली कोई बंदा आपको गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट के बाहर, अगेन जैसे मैं कहता हूँ पॉलिटिशियंस में या मिलिट्री में, आपको बहुत कम ऐसे लोग कोई मिलेगा जो ये चाइना के बारे में कोई नेगेटिव बात होगी। बहुत बड़ी चाइना की गुडविल है पाकिस्तान में।
बीजिंग में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सैबल दास गुप्ता मानते हैं कि मसूद अजहर और अन्य मामलों में चीन पाकिस्तान का साथ क्यों देता है, इसे समझने के लिए उन बातों से परे जाना होगा जिन्हें सुनने समझने की हमारी आदत पड़ गई है।
पाकिस्तान का इस्तेमाल चीन कर रही है भारत के अगेंस्ट में कुछ हद तक सच है। भारत को कंटेन किया जा सकता है, भारत का इकोनॉमिक सुपर पावर बनने से रोका जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान का दबाव रहेगा तो। लेकिन चीन और पाकिस्तान के बीच में रिश्ता कारोक्रम पास के जमाने से है। 1950s में जो पतला सा पास था उस पर लगा हुआ जो हिस्सा है चीन से जो रास्ता जाता है उसको 1950s में 3 गुना साइज, उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि पहाड़ों को खोद के बड़ा किया जाए, उसके बावजूद उस सड़क को 3 गुना बड़ा किया गया था ताकि चीन की मिलिट्री ट्रक पाकिस्तान में जा सके और पाकिस्तान की मदद कर सके। और आज भी वो एकमात्र जरिया है से आप चीन से पाकिस्तान जा सकते। अब जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है सुनने में ये लगता है कि नई चीज है, लेकिन वो मात्र वही सड़क है जो 1950 में एक्सपांड किया गया था।
चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का एक और पहलू है। बकौल सैबलदास गुप्ता,
अक्साई चीन का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान को पता था वो संभाल नहीं पाएगी, इसलिए पाकिस्तान ने चलाकी करके चीन को दे दिया। बीच में ये हुआ कि अमेरिका आ गई और पाकिस्तान ने अमेरिका से प्रेम करना शुरू किया क्योंकि अमेरिका बहुत डॉलर देने लगी और चीन के पास इतने पैसे नहीं थे, तो अमेरिका से सारे पैसे लिए और आज भी करीब $60 बिलियन हैं जो अमेरिका को वो वापस नहीं दे पाई है। अब चीन पैसा दे रहा है, पड़ोस में है, भारत के अगेंस्ट में है, ये तो वंडरफुल सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए।
भारत के पूर्व राजनयिक विवेक काटजू मानते हैं कि जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को भारत के साथ विश्व के अन्य देश भी चरमपंथी मानते हैं, लेकिन सिर्फ चीन के वीटो की वजह से मसूद अजहर हर बार बच निकलता है।
मसूद अजहर हरकतुल अंसार का हिस्सा था, अब फिर मसूद अजहर भारत में कश्मीर में पकड़ा गया, जेल में था, कंधार हाईजैक जब हुआ तो लोगों की जान बचाने के लिए कंधार में मसूद अजहर को भारत सरकार ने रिहा किया और वो रिहा करने के बाद पाकिस्तान गया और आप देखें कि पाकिस्तान में उसका खैर मकदम हुआ, उसने अपनी संगठन बनाई, रिहा होने के चंद महीनों बाद ही उसने ये संगठन बनाई। ये संगठन बहावलपुर में केंद्रित है और वहाँ पर पाकिस्तान की इंतजामिया ने उसकी मदद करी, उसने जमीनें खरीदी, अपने ट्रेनिंग कैंप्स और बनाए, उसका इस्तेमाल हुआ कश्मीर में।
सैबलदास गुप्ता मसूद अजहर के खिलाफ भारत के प्रस्ताव पर चीन के वीटो की 3 मुख्य वजह बताते हैं।
चीन 3 कारण दे रही है, एक तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ प्रोसीजर्स है, कुछ कानून है, कुछ नियम है, उस अनुसार चलना पड़ता है, उस अनुसार लिस्टिंग के प्रोसीजर जब आते हैं तो हम कंस्ट्रक्टिवली इस चीज को सोचते हैं। जो उनका ये कहना है कि जैसे मोहम्मद यूनाइटेड नेशंस ने ऑलरेडी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे उसको डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन ये इंडिविजुअल जो है मसूद अजहर उसके अगेंस्ट में स्पेसिफिकली भारत सरकार कोई एविडेंस नहीं ला पाई है जिससे हम कन्विंस्ड हो जाए। और तीसरी बात ये कहती है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सारे मेंबर्स की सपोर्ट भारत को नहीं मिला है।
वहीं इस्लामाबाद में बीबीसी संवाददाता आसिफ फारूकी कहते हैं कि पाकिस्तान में भारत की तरह इस बात की बहुत चर्चा नहीं होती कि चीन ने भारत के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया है।
इसकी एक वजह तो ये है कि चाइना मसूद अजहर के मामले में या दूसरे इस तरह के ग्रुप्स के मामले में जो रवैया इख्तियार करता है, जो पॉलिसी है उसकी, वो शायद पाकिस्तान की दोस्ती से ज्यादा इंडिया के साथ उसकी जो दुश्मनी है शायद उसका नतीजा है। दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त, वो रिफ्लेक्ट करता है यूएन में।
आसिफ फारूकी बताते हैं कि पाकिस्तान में प्रतिबंध के बावजूद जैश ए मोहम्मद की हरकतें नजर आईं, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्हें पाकिस्तानी खुफिया तंत्र की मदद मिलती रही।
ये 99 में गालिबन पाकिस्तान आए थे, इन एक्सचेंज ऑफ इंडियन प्रिजनर्स, जो एक हाईजैकिंग प्लेन की थी वो कंधार में हुई थी। उसके बाद ये अफगानिस्तान में ही रह गए थे और वहीं पे उन्होंने अफगानिस्तान में ही अपना ये ग्रुप जैश ए मोहम्मद जो है ये बनाया था। उसके बाद ये गालिबन 2001 या 2002 में पाकिस्तान आए थे, लेकिन पाकिस्तान आते ही इनकी जो ग्रुप है उसको बैन कर दिया गया था और इनको अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन इसके बावजूद इनका जो ग्रुप है, इनके जो लोग हैं, वो एक्टिविटीज जो है वो कर रहे थे अपनी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें शायद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की मदद हासिल थी, जिसका जाहिर है मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये उसके बाद से ज्यादातर वक्त इन्होंने अपना कस्टडी में ही गुजारा।
फिर भी पाकिस्तान में एक तबका ऐसा है जो मसूद अजहर का समर्थन करता है।
सपोर्ट देने वाले वो लोग हैं जिनके एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जो कि ये समझते हैं कि इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है, और इनमें भी वैसे ही एक ख्वाहिश मौजूद है कि जैसे इंडिया में ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाए, तो यहाँ पे भी वो लोग हैं वो समझते हैं कि इंडिया को तबाह कर दिया जाए, और वो फिर मसूद अजहर को बहुत अच्छा समझते हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं।
आसिफ फारूकी के मुताबिक कराची के एक जलसे में करीब 17 साल पहले सार्वजनिक रूप से नजर आए मसूद अजहर, इसके बाद भूमिगत हो गए और हाफिज सईद की तरह मीडिया में उनकी कोई खास मौजूदगी नहीं रही। 3-4 साल पहले पाकिस्तानी कश्मीर के मुजफ्फराबाद के पास जिहादी तंजीमों की कॉन्फ्रेंस में उन्हें आखिरी बार देखा गया था। सैबलदास गुप्ता मानते हैं कि मसूद अजहर को पाकिस्तान की सेना का समर्थन हासिल है।
वजह यह है कि चीन को पाकिस्तान की मिलिट्री की बहुत जरूरत है, क्योंकि बॉर्डर में लगा हुआ सिंजियांग प्रोविंस है, जहां मुसलमान की बहुत बड़ी तादाद है और वो बड़े पैमाने में वहाँ सरकार के विरुद्ध में और टेररिज्म का काम हो रहा है। इसलिए चीन नहीं चाहती है कि तालिबान उस तरफ से इस तरफ आ जाए और पाकिस्तान मिलिट्री की मदद उसको चाहिए।
लेकिन क्या मसूद अजहर के मामले में चीन कभी अपना रुख बदलेगा? इस सवाल पर भारत के पूर्व राजनयिक विवेक काटजू कहते हैं,
अगर चीन चाहता अपना रुख बदलना तो मुझे लगता है ये मौका था उसको रुख बदलने। हम उम्मीद कर सकते हैं कि चीन एक दिन ज्यादा संजीदगी से इस मामले में सोचेगा, और चीन ने जो हठधर्मी का रवैया अपनाया हुआ है, चीन महसूस करेगा कि इस वजह से भारत में उसके लिए एक आक्रोश सा, और अगर चीन चाहता है कि भारत से रिश्ते पूर्ण रूप से अच्छे हों, आगे बढ़े, तो ऐसा आक्रोश ठीक नहीं है।
संदीप सोनी, BBC, दिल्ली।
कैसा लगा आज का दुनिया जहान, बताइएगा हमें। और आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं अपनी वेबसाइट bbchindi.com पर, जहां ये सारी खबरें हैं। सऊदी अरब के युवराज की यात्रा, साथी अनुच्छेद 370 और पुलवामा पर तमाम तरह की खबरें। उनके अलावा एक खबर जो है हमारे यहां पन्ने पर, वो है डेड झील कराकुल, जहां नाव तक नहीं चल सकती। ये झील है, झील इसे कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे एशिया की सबसे खारी झील है, और नमक ने इस झील की घेराबंदी कर रखी है। इस झील से पानी निकलकर बाहर जाता ही नहीं, और इस पानी में इतना नमक है कि इसमें खास तरह की मछली के सिवा कोई जीव नहीं पाया जाता, और इसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। तो ये खबर पढ़ने आ सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और सभा समापन से पहले एक बार फिर मुख्य समाचार गुरप्रीत सैनी से।
BBC समाचार। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि चरमपंथ से निपटने के लिए उनका देश भारत के साथ खुफिया सूचनाएं साझा करने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी को अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल अंबानी ने जानबूझकर कोर्ट के उस आदेश की अवमानना की जिसमें स्वीडन की टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन को 5.5 अरब रुपये देने थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर यूरोप में इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की गई तो रूस जवाब देगा। पुतिन ने कहा कि जिन देशों में मिसाइलें तैनात की जाएंगी उन देशों पर तो जवाबी कार्रवाई होगी ही, साथ ही अमरीका पर भी होगी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। आज के कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। अब सभी साथियों की ओर से मैं अपूर्व कृष्ण विदा लेता हूं। अगली मुलाकात होगी कल सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।